अरे समाज के 10 नियम की सीरीज में आज ये लास्ट नियम है, 10वां नियम, 10th प्रिंसिपल। मेरे साथ एक बार बोलिए, बोले सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। तो इस नियम में दो चीजें क्लारिफाई कर रहे हैं स्वामी जी कि हमें हमारी फ्रीडम कितनी है हमारे लाइफ में, किस किस जगह पर हमें एब्सोल्युटली फ्रीडम है और कहां कहां हमें अंडर रेस्ट्रिक्शन रहना पड़ेगा। और ये बड़ा कंटेम्प्रेरी चीज है, आजकल सारी दुनिया में बहस चल रहा है फ्रीडम किसको कितनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डूइंग, बहुत तरह के सोशल पॉलिटिकल एकेडमिक डिबेट्स डिस्कशन चल रहा है। स्वामी जी ने 10th प्रिंसिपल में इसको क्लारिफाई करने की कोशिश की, आपको इस लिमिटेशन तक फ्रीडम है, इस लिमिटेशन तक आपको अंडर रेस्ट्रिक्शन रहना है। अगर आप चाहते हो हर व्यक्ति इंक्लूडिंग आप संसार में खुश रहें, अच्छा रहें, पहली चीज है एब्सोल्यूट फ्रीडम हो भी नहीं सकता क्योंकि हम सब कोई इंडिविजुअली तो वैक्यूम में नहीं रहते हैं कि मैं अकेला रहता हूं और कोई भी नहीं है, तो मैं कहीं भी दौड़ूं कहीं भी कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपके घर में भी बच्चा जब दौड़ने लगता है तो आपको रोकते हो, यहां टेबल है, यहां कुर्सी है, यहां वो है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। अगर घर में कुछ भी नहीं, आपके बच्चे को आप चाहते हो कि पूरा फ्री रन दिया जाए, तो आप इसको खुले मैदान में ले जाते हो, जितना दौड़ना है दौड़ो। तो इसका मतलब है कि कहीं पर फ्रीडम है कहीं पर रेस्ट्रिक्शन है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि हर इंडिविजुअल इस कॉस्मस का भी एक पार्ट है और फैमिली का भी एक पार्ट है। फैमिली इज अनदर पार्ट ऑफ द कॉस्मस। थोड़ा बड़ा बनाए तो सोसाइटी है, उससे बड़ा बनाए तो देश है, उससे बड़ा बनाए तो प्लानेट है, उससे बड़ा बनाए तो सोलर सिस्टम है। तो हम आफ्टर ऑल इस कॉस्मस का पार्ट हैं। हमारा हर वो सिंगल बिहेवियर दूसरे पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालता है और दूसरे का बिहेवियर भी मेरे ऊपर इंपैक्ट डालता है। जैसे ही आप रोड पर गाड़ी निकालते हो, आपके हाथ में सारे कंट्रोल नहीं रहते हैं। आप सही ढंग से गाड़ी चलाओ तो भी दूसरे के बिहेवियर से आप पर इंपैक्ट पड़ेगा। वो गलत ड्राइविंग करे तब भी आपके एक्सीडेंट हो सकता है, या आप गलत ड्राइविंग करो दूसरा सही चलाए तो भी प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब जहां दूसरों के साथ आपको डील करना होता है तो वहां आप इंडिविजुअली एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इंटरओवन है, एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे आपके कपड़े में जो आप ड्रेस पहने हो उसमें जो धागा होता है वो इंटरओवन है, एक धागे को आप छेड़ो तो सारी सिस्टम में गड़बड़ी आने लग जाती है। तो मेरे लाइफ में जो कुछ घट रहा है उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी दूसरों की है। आप इस यूएसए में जिस सोसाइटी में जिस कम्युनिटी में रहते हो, जिस तरह लाइफ जीते हो, खुशी में रहते हो दुख में रहते हो, तो उसमें सिर्फ आपका रोल तो नहीं है ना। इस अमेरिकन सोसाइटी का, इनके रूल्स के, रेगुलेशंस के, इनके कानून के, इनकी कल्चर के कारण आपके काफी सारे लाइफ में डिसीशन होता है। ये जो कल्चर है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सोशल इथोज है, वो क्या चीज है? वो समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन नोइंगली अननोइंगली हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आपको कभी मन करे कि मैं पब्लिक में 10 लोगों के बीच में बैठ के सिगरेट पीऊंगा और उनके मुंह पर धुआं छोड़ूंगा? अब नहीं चलेगा ना। तो अगर आपकी फ्रीडम है कि आप उनके मुंह पर धुआं छोड़ सकते हैं, उनकी भी फ्रीडम है कि वो आपको चांटा लगा सकते हैं। फिर तो फिर फ्रीडम की, तो जब मैं अपने से बाहर निकलता हूं तो मेरे फ्रीडम की एक लिमिटेशन है, क्योंकि मेरा और दूसरे का जो रिलेशनशिप है वो नोन है या अननोन है, वो बड़ा इंटरवोवन है इस कपड़े की तरह, धागे की तरह। इसीलिए सोसाइटी में कुछ रिटिन अनरिटिन रूल्स बने हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो रूल्स किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हो, यह भी जरूरी नहीं है कि वो किसी काउंटी के या स्टेट के रूल्स में बने हुए हो। नहीं, मोस्ट ऑफ जो हमारे एथिक्स है, रूल्स है, वो अंडरस्टूड होते हैं, कोई किसी को लिख करके किताब पढ़ के नहीं बताता है। म्यूचुअली रेस्पेक्ट करना, एक सोसाइटी में जब हम रहते हैं वहां ग्रेजुअली हजारों सालों में धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनते जाते हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये करो ये मत करो। क्यों? हमारी भलाई के लिए, क्योंकि उससे हमें भी फायदा है और दूसरों को भी फायदा है। और वो रूल्स आपकी फैमिली के हो सकता है, हर फैमिली का अपना एक रूल सिस्टम बना हुआ है। रूल से फैमिली से निकलेंगे, हमारे नेबरहुड है, उनके हर एक नेबरहुड के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। किसी नेबरहुड में जाएंगे वहां लिखा होता है कि भाई 20 माइल से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, कहीं लिखा है 10 माइल से ज्यादा नहीं चला सकते। हर कम्युनिटी के अलग अलग कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। क्यों? सबकी भलाई के लिए। आप फ्रीडम के नाम पर अपना कूड़ा लेकर पड़ोसी के घर के सामने तो नहीं फेंक सकते हो, ऑल्दो इट्स ए पब्लिक प्रॉपर्टी, नहीं फेंक सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारे घर के सामने फेंकेगा। तो इसीलिए इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी में ग्रेजुअली बनते जाते हैं। और जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है या किसी रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा है, कोर्ट में उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, वो अपने आप सोसाइटी में इवॉल्व होता है। किसके बेस पर? हमारी अपनी विजडम, कम्युनल विजडम, जो एक कलेक्टिव विजडम के बेस पर, एक दूसरे की जो एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको शेयर करके अलग अलग सिचुएशन को के हिसाब से हम उसको डील करते हैं। और अगर हम उसको फॉलो ना करें, अगर ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस ना बने, जैसे मैंने कहा आपको सिगरेट पीना है दूसरों के मुंह पर धुआं छोड़ने के लिए, दूसरा भी आपको चांटा मार सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने और दूसरों के फायदे के लिए एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। जैसे कुछ रैंडमली कुछ रूल्स आपको किसी सरकारी बुक से नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से नहीं मिलेगा, स्टिल यू फॉलो इट। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप अनसोशियल बिहेवियर करते हैं। जैसे दो चार एग्जाम्पल है कि आप जो एल्डर लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप इनको रेस्पेक्ट करें। जो यंगर हैं वो उनको सीट दे दें, अगर सीट नहीं भी है उनको दें, उनको हेल्प करें। ये किसी किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये सोशल नॉर्म है एंड एवरीवन शुड फॉलो दे, क्योंकि कल हमें भी बुढ़ा बनना है, हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। सोसाइटी में अगर ये इथो खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हमारे एल्डर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं, कल हमारे लिए भी सेम प्रॉब्लम होगा। और सोसाइटी में धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आप स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, आपके टीचर्स पेरेंट्स बताते हैं उसको छुपा के करो, या टॉयलेट करते हो तो फ्लश करो, या अगर किसी ने आपको कोई हेल्प किया तो थैंक यू बोलो, कुछ मांगना है तो प्लीज बोलो, दूसरों के लिए स्पेस दो, हर चीज में अपना नाक मत घुसाओ। इवन अपने घर में अपने बच्चे हो, अपने स्पाउस हो, उनको भी थोड़ा अपना स्पेस देने की जरूरत है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, पर ये हमारी अपनी कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है जो हम सीखते जाते हैं। नहीं सीखते तो दूसरों को सिखाते हैं। एलिवेटर में जाओ तो जो अंदर है उसको पहले बाहर आने दो, बस में चढ़ो, किसी पब्लिक प्लेस में चढ़ो, मेट्रो में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, जो अंदर है पहले उनको उतरने दो, बाद में चढ़ने वाले चढ़े। तो इस तरह की कुछ चीजें होती है जो हमें कोई, वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम, बट अगर हम उसको फॉलो नहीं करते उसे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सोसाइटी में मेशअप होता है, जिसको कहते हैं जंगली राज होता है, जंगल राज शुरू हो जाता है। इसे स्मोक नहीं करना पब्लिक प्लेस में, आप देखेंगे ये आर्य समाज के बाहर भी आपको काफी सारे शॉपिंग कार्ट मिलेंगे, कहां वॉलमार्ट है, एचईवी है, अब कोई ले आया होगा यहां डाल दिया, इसे बैड हैबिट। आप जब भी देखते हैं कोई शॉपिंग कार्ट रोड पर पड़ा हो कम्युनिटी में, आपको बुरा लगता है। अगर हर कोई शॉपिंग कार्ट बाहर से उठा के, स्टोर से उठा के बाहर डालने लगे, एक दो लोग करने के बावजूद इतने प्रॉब्लम होते हैं, ज्यादा करे तो कितना प्रॉब्लम होगा। आप लेट जाएं किसी को टाइम देके, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, पर सामने वाले को उसकी अपनी टाइमिंग है, अपना लाइफस्टाइल है, उसको और कहीं अपॉइंटमेंट होगा और कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीजें, ऐसे हजारों रूल्स हैं जो अनरिटन है, पर जब हम बिहेव कर, इसीलिए इनको कहते हैं सिविक नर्म्स। सिविक नर्म का मतलब होता है आपका वो व्यवहार जो दूसरों के को कष्ट ना दे, सिंपल मीनिंग है। प्रॉब्लम क्या होता है, जनरली जो इंसान है उसमें दो तरह की चीजें काम करता है, एक तो वो रैशनल भी है, उसका दिमाग है, हर चीज को एनालाइज करता है, पर प्रॉब्लम है कि एक दिल भी है, इमोशन भी काम करता है। मोस्ट मेनी टाइम्स इमोशन और आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। देखिए रिलीजन के मामले में पढ़े लिखे आदमी, मतलब अगर थोड़ी ऑफेंडेड फील ना करें तो 90% रिलीजियस थिंग्स आर सुपरस्टिशंस, हैव नो लॉजिक, नो रैशनल्स। ब्रेन यूज करो तो आप रिलीजियस बन ही नहीं सकते हो, वहां इमोशन से काम चलाते हैं। तो जिस रिलीजन में जितना इमोशनल थिंकिंग जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा सुपरस्टिशियस रिलीजन होगा। ये फाइटिंग है। हम बाजार में, ऑफिस में ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, इमोशन को कम करते हैं। मंदिर में ब्रेन को लॉक कर देते हैं, इमोशन को खोलते हैं। घर में इमोशन और ब्रेन दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकते। पति पत्नी को बोल दे आप यहां रंग हो तो सर्वाइव करना मुश्किल है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सॉरी, गलत कोई भी करे सॉरी आपको बोलना पड़ेगा, मतलब कोई भी हो एक जने को सरी बोलना पड़ेगा, गलत करे या ना करे, वहां लॉजिक काम नहीं करता। रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में इमोशन काम करता है, लॉजिक कम काम करता है। जो चाहता है रिलेशनशिप बचे तो पहले बोलेगा सॉरी, गलत ना भी करे। जो चाहता है नहीं मैं बड़ा रैशनल हूं, तो फिर रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फैमिली में दोनों को लेकर चलना पड़ता है। ये इंसान की नेचर है, एक दिल भी है एक दिमाग भी है, और समटाइम उसकी जो इंपल्स है वो उसको फोर्स करता है कोई डिसीजन लेने में। जैसे हम यहां बहुत सारे हैं, आजकल लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत हैं, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, मीठा एक बहुत बड़ा, मीठा और ये तले हुए चीज खतरनाक चीज हो गया है। आपको मीठा मना है, पर क्या करें, कभी कभी आपके इंपल्स आपको मजबूर कर देता है। फिर आप फ्रिज में निकाल के, घर में कोई ना हो तो छुपा के कुछ ना कुछ खा जा, जो होगा देखा जाएगा, दो इंसुलिन ज्यादा ले लूंगा। ये सिर्फ खाने के मामले में नहीं, हर मामले में हमारा वो इंपल्स भी काम करता है। तो इमैनुअल कैंट बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर है, कितने ये ह्यूमन का नेचर है, वो सेंसिबल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, और थर्ड उसका इंपल्स भी उसको मोस्ट ऑफ टाइम पुश करता है। तो जब आप तीनों के बीच में बैलेंस बना करके जिएंगे तभी जी सकते हैं। जब आप बैलेंस बनाएंगे तो आप फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप एब्सोल्यूट फ्रीडम में नहीं जी सकते हो। हमारी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, हम अपने अलावा और किसी को देख भी नहीं पाते, सबको नहीं, बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग होते हैं, ज्यादातर घर में हो तो सीधे मिरर में ही देखते रहते हैं अपने आप को। अच्छा एक बाल पक गया, ओ हर छोटी छोटी चीजें मिरर से वो मन उनका कम हटता है। पहले बोलते थे कि ये लड़कियों की प्रॉब्लम है, पर बाद में पता चला नहीं, ये लड़कों के भी सेम प्रॉब्लम है। लड़की बदनाम है लेडीज, पर जेंट्स छुपा देते हैं, पर बहुत सारे जेंट्स भी आजकल मेकअप भी करते हैं, उनको भी वो हर चीज करना पड़ता है, मिरर के सामने खड़े होने की भी बीमारी है। वो कौन होते हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं? और ये सच है कि धीरे 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 ये जो मॉडर्न सोसाइटी में लोग सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं, सोसाइटी को इग्नोर करते हैं, खास करके वेस्टर्न सोसाइटी में या वेस्टर्न कल्चर जहां जहां पहुंचता है वो वहां सेल्फ सेंटर्ड कल्चर को ज्यादा प्रमोट करते हैं, मैं और मैं। और ऐसा नहीं कि मैं ही मैं हूं, मेरे साथ भी और हैं, वो लोग जो मेरे लिए हैं, जिनसे मुझे फायदा पहुंचता है, और वो भी गिने चुने लोग होते हैं, मैं, मेरे स्पाउस, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी, मेरे बच्चे, स्टॉप फुल स्टॉप, थोड़ी बहुत आगे जाते हैं पेरेंट्स, तो बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली, उससे आगे मेरा कोई लेन देन नहीं है। जब आप जितना अपने सर्कल को छोटा करते जाते हैं, आप दूसरों के लिए उतना प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही करते हैं, खुद के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं, तुम खुद को पैदा नहीं किए हो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारे हार्डवर्क से, तुम्हारे इंटेलिजेंस से नहीं मिला है। अगर मिला होता तो क्या जो गरीब देशों में कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता नहीं, क्या किसी गरीब देश में, कोई गरीब कम्युनिटी में कोई टैलेंटेड नहीं होता है क्या? फिर वो क्यों तुम्हारे तरह हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं क्या? वो तुम्हारे तरह क्यों ज्यादा प्रॉस्परस नहीं बन पाया? क्योंकि सोसाइटी में या वहां के इकोसिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। आप अगर बहुत बड़े धनी हैं, ज्ञानी हैं, पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत कुछ है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू आर द पर्सन हु गेन इट, आपके पास जो भी है उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम में रूल्स है, रेगुलेशन से बहुत कुछ और चीजें हैं जो इस सोसाइटी को डिसिप्लिन्ड बनाता है, जहां आप अपने ऑनेस्टी से, अपने मेहनत से आप अपने आप को बड़ा बना सकते हो। आपकी ऑनेस्टी का वैल्यू तभी होता है जब सोसाइटी डिसिप्लिन्ड होता है। आप एक जंगल राज में क्या ऑनेस्टी दिखा के कमाओगे? तो इसीलिए यह समझना जरूरी है कि मेरी लाइफ सिर्फ मैं, मेरे स्पाउस, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा मैं इस विशाल दुनिया का भी एक पार्ट हूं, मुझे उनके साथ चलने की जरूरत है। यही प्रॉब्लम साइंस और टेक्नोलॉजी के जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ 16 सेंचुरी से, मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में जब हम बहुत ज्यादा वो सेल्फ सेंटर्ड होने लगे, नेचर को एक्सप्लोइट करने लगे, उसका रिजल्ट हुआ कि इस प्लैनेट में मुश्किल से 10% लोगों ने नेचर को एक्सप्लोइट करके खूब लग्जूरियस लाइफ जिए, पर 100% लोगों को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो भी नेचर को एक्सप्लोइट करने का जो रिजल्ट है सबको भुगतना पड़ रहा है। ये इसीलिए कि हम अपने फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं। और प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो जाता है जब हमें ये समझ में नहीं आता कि जो मेरी प्राइवेट ड्यूटी है, जो मेरी इंडिविजुअल ड्यूटी है मेरे लिए या जो मुझे करना चाहिए, और जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है, जब दोनों में कोई कंट्राडिक्शन हो, एक दूसरे की खींचतानी हो, तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं करूं तो क्या करूं, ये करूं वो करूं, मैं अपना ख्याल रखूं या सोसाइटी का ख्याल रखूं। लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशन आते हैं जहां हम डिलेमा में पड़ते हैं, मैं क्या करूं, कोई नेचुरल कैलमिटी है, कोई एक्सीडेंट है, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अभी हार्वी की ह्यूस्टन में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई 2-3 साल पहले, बहुत लोग उस ट्रेजेडी से गुजरे, परेशान हुए, आज तक भी बहुत सारे लोग उबर नहीं पाए। पर जब प्रॉब्लम्स आता है ना, तब ह्यूमन बींग की नेचर पता लगता है। जिनके साथ कुछ खराब हुआ, ऐसे 3 तरह के लोग मिले, खराब हुआ रोए धोए पीटे, क्यों मेरे साथ हुआ, मेरा ही क्यों हुआ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, सरकार ने मुझे क्या किया, वगैरह वगैरह। दूसरा ग्रुप जो चुपचाप जो प्रॉब्लम हुआ उसको सह गया, अपने आप को स्टैंड किया, ठीक करने की कोशिश की। एक तीसरा ग्रुप था जिसके घर में पानी घुसा हुआ है, वो अपने बच्चों को, पति को या पत्नी को एक सटन जगह पर पहुंचा करके वो दूसरों को बचाने में लगा हुआ है, दूसरों को हेल्प करने में बचा हुआ है, अपनी कोई चिंता नहीं, दूसरों को हेल्प करता है। ये भी तो एक ग्रुप है ना। डिलेमा है, एक ने चुना कि मेरी इंडिविजुअल वेलबींग से मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं 10-20-50-100-200 लोगों को मदद कर सकूं। एक ने चुना कि मैं और मेरा परिवार, दैट्स इट, व्हाई शुड आई गो बियॉन्ड दैट। दूसरे ने दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग गॉड, ब्लेम करना शुरू कर दिया, मेरे साथ क्यों हुआ। तीनों अफेक्टेड हैं पर तीनों का रिस्पॉन्स अलग है। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां हम समझ में नहीं आता है कि मैं अपने लिए करूं या सोसाइटी के लिए करूं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारे शास्त्र भी, हमारे वेद शास्त्र कहता है जब भी आपको डिलेमा हो 4 चीजों का ध्यान रखना है। कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। पहले देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, अगर तुम्हें कुछ पता है शास्त्र को पढ़ सकते हो। शास्त्र का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र हो, आपको सोशियोलॉजी के भी बहुत सारे शास्त्र मिलेंगे। अगर आपको उसमें कुछ रास्ता मिलता है तो फॉलो करो, अगर आपकी नहीं समझ में आता है तो देखो कि जो बड़े बड़े लोग जिनकी जो महात्मा हैं, जो सोसाइटी में बहुत बड़े लोग हैं जिनको आप आइडियल मानते हो, वो ऐसे सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेते हैं। अगर वो भी आपके लिए क्लैरिटी ना लाए तो कहते तुम्हारी अपनी अंदर की आत्मा, तुम्हारी जो सिक्स सेंस है, तुम्हारे अपने अंदर का क्या आवाज है उसको सुनो, वो मोरलिटी है। अगर हम इस मोरलिटी को फॉलो ना करें तो प्रॉब्लम कहां होता है? बहुत सारे चोर आपको मिलेंगे, मतलब खराब लोग को मिलेंगे, जब उनको पनिशमेंट मिलता है तो वो ब्लेम करते हैं सोसाइटी को, मैं चोर क्यों हूं, सोसाइटी ने मुझे चोर बनाया, मैं गरीब था, खाने को नहीं था, मजबूर हुआ छुरी चलाने के लिए, डाका डालने के लिए। पर लाखों लोग हैं जो उससे भी ज्यादा गरीबी में है पर बड़े ऑनेस्ट लाइफ जीते हैं। कल्पना करिए हर वो टेररिस्ट, हर वो चोर, हर वो डाकू, हर वो बुरा आदमी जब वो एक्सक्यूज देता है कि मैं इसीलिए ये कर रहा हूं क्योंकि सोसाइटी ने मेरे साथ ये अनजस्टिस किया, अगर यही फॉर्मूला अपना करके हर आदमी इसी तरह का रिएक्ट करने लगे, आपको लगता है ह्यूमन सोसाइटी 2-4 साल से भी ज्यादा दिन जी सकता है? नहीं। हर गरीब चोर बन जाए तो क्या होगा? आपके लाइफ में, किसी ना किसी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फील होता है मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आप गोली चलाना शुरू कर दो तो क्या होगा? इसी को कहते हैं मोरलिटी, एथिक्स। जब भी आप कोई गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए रीजनिंग ढूंढते हो तो हमारे शास्त्र कहता है कि फिर ऐसा करो, सोचो कि वही गलत, जो जिस गलत चीज को करने के लिए जस्टिफिकेशन ढूंढते हो, सपोज वही गलत चीज इस प्लैनेट में रहने वाले हर आदमी करने लगे क्या होगा? अगर खराब होगा तो समझ लीजिए कि यू आर इन ए रॉन्ग वे। इसी को हमारे यहां कहते हैं यूनिवर्सल लॉज। तुम्हारी फ्रीडम वहीं तक है, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, योर लिबर्टी टू स्विंग योर आर्म्स एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। जो करना है करो, हाथ को जितना घुमाना है घुमाओ, यू आर फ्री। और आपको लगता है कि मेरा हाथ है, मेरी मर्जी, में जितना भी घुमाओ घुमाओ, पर तुम्हारी घुमाने की फ्रीडम वहीं तक है जहां मेरा नाक का टिप शुरू होता है, यहां लगेगा फिर इधर से भी हाथ घूमेगा। सपोज हर आदमी अपना हाथ घुमाने लगे, हर आदमी चोरी करे, हर आदमी बेईमानी करे, हर आदमी गुस्से में लाल पीला होकर मार काट करने लगे, हर आदमी टेररिस्ट बन जाए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं एथिक्स किसको मानोगे? कहते हैं एथिक्स का मतलब होगा जिसको हर आदमी करे तब भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो एथिक्स है, और जिस चीज को तुम कर रहे हो और अगर उस चीज को सब करे उससे कुछ सोसाइटी में या तुम्हारे में भी नुकसान होगा वो गलत है। तुम अगर जस्टिफाई करते हो झूठ बोलने को किसी भी रीजन से, सोचो कि सारी दुनिया झूठ बोले, तुम्हारे फैमिली में हर मेंबर झूठ बोले, कैसे सर्वाइव करोगे? इसीलिए कहा झूठ बोलना पाप है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने, जब सब झूठ बोलने लगेंगे कोई नहीं बचेगा, पर अगर सब सच बोलेंगे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों को जरूर प्रॉब्लम होगा, पर ग्रेजुअली अगर उसको हम सह जाएं पर सबका भला होगा। समझ लीजिए कि मैं रिएक्शन में मारता हूं लोगों का खून करता हूं या वायलेंट होता हूं और हर आदमी वायलेंट हो जाए फिर सरवाइव करना मुश्किल है। इसलिए नॉन वायलेंस बेटर है क्योंकि सब सरवाइव कर सकते हैं। तो रूल है कि जो तुम कर रहे हो सोचो कि वही चीज अगर सब करने लगे तो मैं बच सकता हूं क्या, अगर नहीं तो मैं रॉन्ग हूं, मुझे उसमें अपने फ्रीडम पर कंट्रोल लाने की जरूरत है। तो इसीलिए कहा सर्टनली फ्रीडम डज मीन द राइट टू डू एज वन प्लीजेस बट ओनली अंटिल योर चॉइस स्टार्ट टू इन्फ्रिंज ऑन अनदर पर्सन्स फ्रीडम। इसलिए दुनिया भर में अलग अलग जगह कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में उसको हम धर्म कहते हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे। और वो जो धर्म की जो यूनिवर्सल एथिक्स की बात है वो चीजें हैं जो हर किसी को करने की जरूरत है रिगार्डलेस ऑफ टाइम प्लेस सिचुएशन। ये एक एग्जांपल लेते हैं नॉन एग्रेशन प्रिंसिपल को जो ये प्रोहिबिट्स करता है कि कोई भी फोर्स या वायलेंस इनिशिएट ना किया जाए दूसरों के खिलाफ, उसमें सब आता है मर्डर रेप किडनैपिंग असॉल्ट रबरी थेफ्ट वैंडलिज्म एनीथिंग। मैं जस्टिफाई करता हूं कि मैंने किसी को मारा वायलेंट किया क्योंकि ये कारण थे। सपोज हर आदमी यही सोच के रिएक्ट करे तो ये प्लैनेट ही नहीं बचने वाला। अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो जिससे प्लैनेट भी बच सके तुम भी तो वो है एथिक। इसी को हमारे यहां कहते हैं सामान्य धर्म। बौद्ध दर्शन में इसको अष्ट आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य मतलब आर्य कहते हैं नोबेल, सत्य मतलब ट्रूथ, राइट व्यू राइट इंटेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हिंदू ट्रेडिशन में इसको कहा जाता है सामान्य धर्म मतलब जनरल एथिक्स और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो कि हर किसी को कैसा भी टाइम हो प्लेस हो सिचुएशन हो सराउंडिंग्स हो यू हैव टू फॉलो इट। अगर तुम नहीं कर सकते तुम्हें लगता है कि मेरी सर्कमस्टेंसेस इकोसिस्टम ऐसा है कि मैं फॉलो नहीं कर सकता, अगर यही एक्सक्यूज हर कोई देने लगे तो तुम भी नहीं सर्वाइव करोगे। व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स, मनु लिखते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो कहते हैं पेशेंस रखना, जब भी आप इसको पढ़ें इसके अपोजिट को भी दिमाग में रखिएगा। हर आदमी अगर इंपेशेंट हो जाए तो क्या होगा, जिस तरह मैं इंपेशेंट होता हूं छोटी छोटी चीजों पर, अगर ऐसा मेरे फैमिली में भी हर कोई इतना ही इंपेशेंट दिखाए तो फैमिली की क्या हालत होगी। इसीलिए पेशेंस रखना एथिक है, मोरलिटी है। यहां आपको अपने फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, ये सोसाइटी को सस्टेन करने में हेल्प करता है। मैं अगर माफ नहीं करूंगा ओके मैं नहीं माफ कर सकता किसी को, पर तुम्हें अगर कोई भी ना माफ करे ऐसा तो नहीं कि तुम गलत नहीं करोगे। आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, हजारों गलतियां तो होंगी ही होंगी, ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं जो गलत नहीं करेगा। और तुम्हें अगर कोई ऐसे ही ट्रीट करे कोई भी माफ ना करे तो क्या करोगे। तो तुम किसी को फॉरगिव करके एहसान नहीं करते हो, तुम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ रास्ता खुला रखते हो। तुम जब अपने माइंड पर कंट्रोल करते हो, माइंड पर कंट्रोल मतलब जो मन में आए मैं करूं, मैं ये करूं वो करूं मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगी। कंट्रोल करते हो तो दूसरे भी अपने अपने माइंड पर कंट्रोल करेंगे, तभी तुम अपने घर में, बाहर, बाजार में, कहीं भी सेफ रहोगे। अगर तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है, तुम क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा भी तुम्हारे लिए अपने माइंड को कंट्रोल करे। तो ये जो यहां बेसिकली 10 बताया गया, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 16 है, बेसिक चीजें हैं कि इन चीजों, यही सब चीजें होती हैं जो जहां इंसान को अपनी फ्रीडम से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन पर भर अंडर होना जरूरी है। इसी को योग दर्शन में यम और नियम के रूप में बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, जो दूसरों के साथ आप डील करते हो इन चीजों का ध्यान रखना, फ्रीडम फ्रॉम इल विल, ट्रूथफुल, नॉन स्टीलिंग, कॉन्टिनेंस, ग्रीड लेसनेस एक्सेट्रा। एक दूसरा स्वधर्म बताया हमारे शास्त्रों में। स्वधर्म मतलब जहां आपको फ्रीडम है, करना चाहो ना करना चाहो, इंडिविजुअल एथिक्स, वो आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे योग दर्शन में नियम के कैटेगरी में आता है, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, करोगे तुम्हारा फायदे का है, नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान का है, पर ये तुम फ्री हो, तुम्हारी मर्जी है, करो मत करो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू चूज इट। तुम्हें नहाना है, नहीं नहाना है, मत नहाओ, 6 महीने तक मत नहाओ, नहाओगे अच्छा है, नहाओगे तो हेल्दी रहोगे, साफ रहोगे, गुड फील करोगे, नहीं नहाओगे तो तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं रोकने वाला। अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखोगे, सेटिस्फाई होगे छोटी छोटी चीजों में, तो रात को अच्छी नींद सोओगे, खुश रहोगे, नहीं होगा तो तुम दुखी घूमोगे, तुम्हारी मर्जी, सेटिस्फाई होगे या नहीं होगे। पढ़ोगे लिखोगे बड़ी अच्छी चीज है, जितना स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा रखोगे, नॉलेजेबल बनोगे, अच्छा है, नहीं रखोगे मूर्ख बनोगे, इलिटरेट बनोगे, योर प्रॉब्लम, फ्रीडम है। ईश्वर भक्ति करोगे, अंदर शांति होगी, तृप्ति होगी, हम्बलनेस आएगा, पोलाइटनेस आएगा, ईगो कम होगा, नहीं रखोगे तुम्हारी मर्जी, ये स्वधर्म है, फ्री हो आप। तुम अपने आप को कितना फायदा पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे, तुम्हारी मर्जी, पर जहां तुम्हारे नाक दूसरे के नाक से टकराने को आए, वहां तुम्हारी फ्रीडम रेगुलेटेड होगा। इसीलिए कोई भी को एग्जिस्टेंस, हम बिना को एग्जिस्टेंस के इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको कहते कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के लिए इंडिविजुअल को कुछ फ्रीडम कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ फ्रीडम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब तक हम एक दूसरे की राइट्स को कम ना करें, अपनी राइट और अपनी फ्रीडम को कम ना करें, तो कोई कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। जब कोई कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का भी सवाल नहीं उठेगा। जब तुम एग्जिस्ट करो उस सोसाइटी में, फिर तुम डिसीशन लो तुम्हें अपने लिए क्या करना, और वही डिसीशन में तुम फ्री हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इफेक्ट करता है, दूसरों को नहीं। तुम नहाओगे नहीं नहाओगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छा खाओगे बुरा खाओगे, तुम्हारी मर्जी। पर जहां भी सोसाइटी में रहते हुए हम रहेंगे, हमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइडेड है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए राम को, श्री राम की जो प्रसिद्धि है, वो उनकी, आपको पता है उनकी एडजेक्टिव क्या है, सबसे बड़ा एडजेक्टिव मर्यादा पुरुषोत्तम, बट दिस मर्यादा, मर्यादा मीन्स लिमिटेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एब्सोल्युटली फॉलो करता है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है। मे बी सम ऑफ those social norms today is not valid, but at that time it was valid. So he followed all those rules, regulations and ethics. So he used to call Maryada Purushottam. तो देवियों सज्जनों, ये आर्य समाज का दसवां नियम यही बताता है, आपको कुछ चीजों में एब्सोल्यूट फ्रीडम है, कुछ चीजों में हमारा जो व्यवहार है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। जब इस तरह का सोच सबके अंदर हो तो फिर सोसाइटी एक सुंदर समाज बनता है, और एक सुंदर समाज में सबको फायदा होता है, मुझे भी होता है, आपको होता है, सबको होता है। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।